नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ब्रह्मा कुमारीज के फेसबुक और यूट्यूब पर हमारी लाइव प्रस्तुति में। ये है हमारा 21 दिवसीय योगा चैलेंज संपूर्ण योगा। 21 दिनों के लिए हम सब एक बहुत ही अनूठा प्रयास कर रहे हैं, वो कि योग को उसके संपूर्ण स्वरूप में जानें और उसके बेनिफिट्स को रीपिन करें अपने लाइफ में उसे अप्लाई करके। योगा के फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं, इमोशनल एस्पेक्ट्स हैं और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स भी हैं, यानी एक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए योग एक संपूर्ण शास्त्र है। योग के साइंस को हम सभी धीरे धीरे समझते जा रहे हैं और बहुत सारे लोग हर दिन योग करने लगे हैं, और खासकर पिछले 1-1.5 साल में जब से कोरोना के समय पर लॉकडाउन और बीमारियों के चलते ज्यादा से ज्यादा लोग अपने फिटनेस के बारे में, सिर्फ अपने शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में ही नहीं, अपने मन के स्वास्थ्य के बारे में भी योग के उपयोग करने लगे हैं। और हम सभी जानते हैं कि योग से मन भी स्वस्थ होता जाता है। तो आइए आज इस संपूर्ण योग की श्रृंखला के चौथे दिन आप सभी कुछ नया सीखेंगे। आज के लिए एक नए योगासन से आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो आप भी हो जाइए तैयार हमारे साथ योगासन करने के लिए, साथ साथ हम योगा करेंगे भी, और योग के बाद कार्यक्रम में होगा बोध और फिर उसके बाद होगा मेडिटेशन भी। अगर इस दौरान आपको कुछ भी पूछना है, कोई भी प्रश्न है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्न लिखकर डाल सकते हैं। यूट्यूब या फेसबुक, जहां पर भी आप देख रहे हैं, कमेंट से हम आपके प्रश्नों को लेंगे, स्क्रीन पर दिखाएंगे और हमारे एक्सपर्ट से उसके बारे में उत्तर भी लेंगे। तो आइए पहले शुरू करते हैं योगासन से आज के कार्यक्रम को। आने वाले 5 मिनट के लिए सभी करते हैं मिलकर योगासन, और हमें कराने वाले हैं हरीश वैद्य जी, जो बड़ौदा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चलिए करते हैं योगासन।
वंदे मातरम। आप सबको बहुत ओम शांति, वंदे मातरम। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सीखेंगे पाद हस्तासन। ये सजा के रूप में स्कूल में कराया जाता था पहले। इसमें भी दो पार्ट हैं। ये लगभग लगभग बच्चों से जुड़ा है, बड़े भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर बच्चों की याद शक्ति, उनका स्मृति बल बढ़ाना है आपको, तो ये स्कूल में शिक्षा के तौर में कराया ही जाता था। कोई बच्चा अगर होमवर्क नहीं करता था स्कूल में, अगर कुछ भी गफलत करता था, तो उसको एक सजा के रूप में होता था। आज देखिए, अगर आपके बच्चे आपके साथ नहीं है तो आप बुला लो उनको, ये उनके काम का ज्यादा आसन है। इसलिए क्योंकि इससे इस मस्तिष्क के भाग में इतनी ऊर्जा आ जाती है और हमारी स्मृति शक्ति बढ़ जाती है। तो आज हम पाद हस्तासन देखेंगे। पाद माना पैर और हाथ माना हाथ, पाद और हस्त दोनों का मिलाप हो ऐसा करना है। चलिए आप सीधे खड़े हो जाइए, हमारे साथ भी आप जुड़िए। दोनों पैरों के बीच लगभग एक बिंदस का फासला, उसे थोड़ा कम होगा तो भी चलेगा। फिर दोनों हाथ ऊपर ले जाइए, खींचे ऊपर ले जाते और आगे खींचते हुए हाथ को बिल्कुल आगे झुकिए और नीचे ले जाइए। अपने पैरों को आप पकड़ लीजिए और हो सके तो आपका कपाल घुटनों से आप टिका दीजिए, और इस अवस्था में सांसें छोड़ी हुई होनी चाहिए और ध्यान आज्ञा चक्र पर होना चाहिए। सीधा खड़े रहना है ताकि रीढ़ की हड्डियों से पूरी ऊर्जा आज्ञा चक्र की ओर जाती है, फिर आगे जाने के लिए कोई जगह ही नहीं है तो यहां रुक जाती है। ओके, रिलैक्स, सांसें लेते लेते खड़े हो जाएंगे और मूल स्थान पर वापस। ये देखिए, ये पाद हस्तासन है, ये सूर्य नमस्कार का भी एक पार्ट है। पिछले कुछ दिनों में हमने वो भी देखा था, पर्वतासन देखा था, ये इसी से थोड़ा थोड़ा जुड़ा हुआ है। लेकिन जिनको रीढ़ की हड्डी में तकलीफ है, लोअर बैक में तकलीफ है, या घुटनों में तकलीफ है, एंकल जॉइंट में तकलीफ है, फ्रोजन शोल्डर है, वे लोग इसे अवॉइड करेंगे। पीरियड्स के दिनों में ये नहीं कर पाएंगे, प्रेगनेंसी के दिनों में नहीं कर पाएंगे, लिवर सिरोसिस वाले नहीं कर पाएंगे, जिन्होंने स्टेंट डाला है वो नहीं कर पाएंगे, जिनकी सर्जरी हो गई है पेट वक्षस्थानों के रिलेटेड, छाती के रिलेटेड, वो भी नहीं करेंगे। अन्यथा आपकी और भी कुछ अगर मर्यादा है तो वो भी आप नहीं करेंगे, आपके योग इंस्ट्रक्टर को आप पूछना। लेकिन इसके जो साइंटिफिक पहलू वो ध्यान रखना, इसका सीधा ही कनेक्शन ब्रेन के साथ है, क्योंकि ये जो है वो एक ऐसी मुद्रा है, हम पैरों के साथ भी ये मुद्रा करते हैं जिससे एकाग्रता बढ़ती है, जिसे ज्ञान मुद्रा कहा जाता है। ये एक्यूप्रेशर के पॉइंट भी चार्ज हो जाते हैं हाथों के और पैरों के, और ब्रेन हमारा एक्टिवेट हो जाता है। अच्छा, इसका दूसरा जो पहलू है वो भी हम कर लेते हैं, उसको मुर्गे की क्रिया सजा के रूप में ही ये होता है, लेकिन आप मजा के रूप में ले लेना, आप भी करिए। धीरे धीरे दोनों पैरों में लगभग 1 से 1.5 फुट का फासला हो, दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाते पीछे से हाथ यहां लाएंगे और कान पकड़ेंगे। बहुत बढ़िया, रितुबेन बाईटी हमारे साथ है, गुजरात सरकार की वो योग प्रशिक्षिका है, सरकार ने अभी बहुत सारे योगाचार्यों को अपनी सेवा के लिए लिया है। ओके, रिलैक्स। ये अवश्य करके देखना, इसके बेहतरीन फायदे हैं। एक महीने के भीतर भीतर अगर किसी भी तूफानी बच्चा है, गांव के डॉन का भी बच्चा है, अगर वो भी ये करेगा तो वो भी बिल्कुल एकाग्र हो जाएगा, उसके अंदर दिव्यता निखरना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आज्ञा और सहस्त्रार चक्र के साथ ही इसका खेल है। अनाहत से होकर के सारी ऊर्जा आज्ञा और सहस्त्रार को मिलती है, और वो बालक दिव्यता में उसकी सारी ऊर्जा बढ़ना शुरू हो जाती है। एक बार इस तरफ का मुंह करके बताएंगे आपको रितुबेन, आप भी कीजिए इनके साथ, ऐसे ऊपर हाथ ले जाइए, दोनों पैरों के भी 2 फुट का फासला हो, पैर थोड़ा करीब ले लीजिए, कान पकड़ेंगे, लगभग 12 सेकंड इस अवस्था में रहेंगे और सांस लेते लेते मूल स्थान में वापस आ जाएंगे। बेहतरीन है ये, योगियों को एकाग्रता के लिए तो अवश्य करना चाहिए, बहुत एकाग्रता बढ़ती है। कई लोग जो है उनको मालूम ही नहीं होता, ऐसा तबला बजाते रहते हैं, उनके पैर हिलते रहते हैं, ऐसे ऐसे पैर हिलाते रहते हैं, उनको मालूम नहीं होता है, उनके मन के गर्भ में इतनी अशांति रहती है कि उनका शरीर बिना उनकी परमिशन के हिलता रहता है, उनको मालूम भी नहीं पड़ता है। तो आप भी कर सकते हो, बहुत मजेदार है, इससे हाइट बहुत जल्दी बढ़ती है, याद रखना। 1 महीना चाहिए, रोज बच्चों को ऐसे दीवार से चिपका देना, एक पेंसिल से लाइन बना देना, और 1 महीने के बाद फिर से नापना, निश्चित रूप से बच्चों की हाइट भी बढ़ती है। ये पूरा श्रेय मैं भगवान शिव के चरणों में अर्पित करता हूँ। प्राणों से भी अधिक प्रिय जगत जननी मेरी भारत माता को प्रणाम करके आज के विषय के समापन की आज्ञा चाहता हूँ। रुचिबन का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। वंदे मातरम।
बहन धन्यवाद, रुचि बहन का, और धन्यवाद हरीश वैद्य जी का, जिन्होंने आज ये बहुत ही आसान सा आसन हमें सिखाया है, और हम सभी इस आसन को कर सकते हैं, और बच्चों के लिए तो खास ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इसके बेनिफिट्स क्या हैं ये भी हमने सीखा। चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ, वो है आज का बोध। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पतंजलि ने अष्टांग योग के बारे में बताया है, उसके अष्ट अंगों में पहला अंग है यम, और इस यम में 5 अलग अलग प्रकार बताए गए हैं। उसमें हमने अलग अलग यमों को समझने का कोशिश हम सब कर रहे हैं। पहले तो हमने अहिंसा के बारे में सीखा, और ब्रह्मचर्य के बारे में कल हमें बहुत अच्छी जानकारी मिली। आज के बोध के बारे में, एक अगले यम को जानने के बारे में हम चलते हैं ब्रह्मा कुमारी इसके मुख्यालय के शांतिवन परिसर में, जहां पर हमारे साथ राजयोगिनी गीता दीदी जी जुड़ेंगे। चलिए चलते हैं उनके पास। नमस्कार दीदी, स्वागत है आपका। आज हमारे साथ आदरणीय राजयोगिनी गीता दीदी जी हैं, तो ब्रह्मा कुमारी इसके शांतिवन मुख्यालय परिसर से जुड़ रहे हैं, और हर दिन की तरह हम योग से जुड़े हुए बोध को समझ रहे हैं। हम योग क्या है, उसके थियोरी क्या है, उसके एस्पेक्ट्स क्या हैं, उसको कितने अच्छी तरीके से हमें समझने की आवश्यकता है, उसको भी हम दीदी जी से हर दिन सुन रहे हैं। आपके मन में भी कुछ प्रश्न उठते हो, अगर आपको लगता है कोई चीज आप पूछना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, तो आप बेझिझक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिए और आपके जो भी प्रश्न होंगे वो हम दीदी जी से पूछेंगे और मार्गदर्शन लेंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप इस कमेंट्स को फेसबुक पर या यूट्यूब पर, जहां पर भी आप टाइप करना चाहें वहां टाइप कर सकते हैं, वहां से कमेंट्स को हम स्क्रीन पर दिखाएंगे और प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपके पास समय है, लगभग 15 मिनट तक हम दीदी जी से वक्तव्य सुनेंगे और उसके बाद आपसे बातचीत होगी। अगर आप कुछ कमेंट्स भी लिखना चाहते हैं, कुछ अच्छी बातें ही शेयर करना चाहते हैं तो भी आप लिख सकते हैं, और स्क्रीन पर जैसे आप देख रहे हैं हमारे दूसरे साथियों के कमेंट्स आ रहे हैं, वैसे आपके भी कमेंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। दीदी आपका स्वागत है, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आज के बोध के बारे में हमारे सभी साथियों को आप अवगत कराएं।
आज हम अपरिग्रह के संबंध में बातचीत करेंगे। योगी जीवन एक सादा सरल सात्विक जीवन है और हम सब अनुभव कर चुके हैं कि अति भोगवाद और अति भौतिकवाद आखिर तो हमें ही तकलीफ देता है। मानव जीवन की वास्तविकता ये है कि जो इस दुनिया में आया है वो वापस जरूर जाएगा। हमने इस दुनिया में आकर शरीर धारण किया है और आखिर शरीर छोड़कर हर एक को जाना है। जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। ये सत्य जानते हुए भी हमारे अंदर संग्रहखोरी आती है और हम आवश्यकता से ज्यादा, अनेक गुना ज्यादा हम इकट्ठा करते रहते हैं। एक सर्वे में हमने पढ़ा था कि विश्व की 85% जो सुविधाएं हैं, सुख के साधन हैं, वो विश्व के 15% लोग भोगते हैं और बाकी के 85% लोगों के लिए सिर्फ 15% साधन है। इस प्रकार का इम्बैलेंस ही व्यक्ति को अन्याय और पक्षपात का अनुभव कराता है और उसके मन में आक्रोश पैदा होता है। हमें जीवन के लिए क्या चाहिए? जो जरूरी आवश्यकताएं हैं उसकी तो अवश्य पूर्ति होनी चाहिए और उसके संबंध में महात्मा गांधी जी ने बहुत ही स्पष्ट कहा है कि मदर अर्थ हैज सफिशियंट फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर ग्रीड। मानव जीवन की जो जरूरियातें हैं वो तो मां धरती आराम से पूरा करती है, परंतु लोभ के लिए नहीं। और इस लोभ वृत्ति, संग्रह वृत्ति के कारण जो अन्य को मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, क्योंकि हम ज्यादा ही अपने पास ले लेते हैं। हर बात में, हर चीज में मालिक बनने की वृत्ति मनुष्य की रहती है कि मैं ये भी प्राप्त कर लूं, ये भी प्राप्त कर लूं। फिर वो चीजें हैं, पोस्ट पोजीशन है या पावर है, उसके लिए वो प्रयास करता रहता है। कई बार मानव संबंध से भी ज्यादा वस्तुओं, चीजों और पदार्थों को प्राप्त करने में हमारा अधिक ध्यान होता है अब अगर हम अपना जीवन योगी बनाना चाहते हैं, हम सेल्फ रियलाइजेशन करना चाहते हैं, गॉड रियलाइजेशन करना चाहते हैं, तो जब हमारा प्रथम अभ्यास सही देहभान से न्यारे अपने वास्तविक चैतन्य स्वरूप की अनुभूति का है, तो और चीजों से अगर हमारा इतना लगाव रहेगा तो हम डिटैच नहीं हो सकेंगे, क्योंकि हमें योग अभ्यास के लिए कुछ क्षणों के लिए अन्य सभी बातों से न्यारा होना होता है। अगर हम इतनी चीजों का शौक रखते हैं, धन साधन का शौक रखते हैं, तो हमारा बुद्धि योग न्यारा कैसे होगा, हम डिटैच कैसे होंगे, हम अपने आप को विड्रो कैसे कर सकेंगे, जब प्रथम स्टेप ही नहीं कर सकेंगे तो परमात्मा से मिलन या जोड़ कैसे होगा। इसलिए योगी व्यक्ति से ये अपेक्षित किया जाता है कि उनका जीवन सादा हो, सरल हो और सात्विक हो। अखबारों में कई समाचार आप पढ़ते रहते हैं कि व्यक्ति कितना संग्रह करता है, दूसरी व्यक्ति को जब आवश्यक है तो वो चीजें मिल नहीं पाती, और व्यापार के क्षेत्र में भी आप देखते हैं कि संग्रह खोरी करके एक बनावटी अभाव की स्थिति उत्पन्न की जाती है और बहुत ही ज्यादा दाम लेकर के वो चीज फिर व्यक्ति को खरीदनी पड़ती है। कोरोना की महामारी में आपने कई समाचार सुने होंगे कि कईयों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, कहीं दवाई नहीं मिल रही थी, कहीं कोई इंजेक्शन नहीं मिल रहे थे, क्योंकि कुछ व्यक्ति उसका संग्रह कर लेते हैं और महंगे दाम से फिर देते हैं। इस प्रकार की वृत्ति प्रवृत्ति क्या दिखाती है, उसमें मानवता नहीं दिखती है। और हमें तो मानवता के स्तर से ऊपर उठना है, योगी बनना माना अलौकिक दिव्य बनना है। इसलिए सदियों पहले हमारे ऋषि मुनियों ने, पर्टिकुलर जब हम पतंजलि मुनि के सिखाए हुए अष्टांग योग की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने प्रथम यम में ही इस बात को महत्व दिया। और व्यक्ति जब जाता है तो सब कुछ यहाँ का यहाँ ही रह जाता है। कहते हैं ना कि जो शरीर है दिन रात का साथी, जब आत्मा शरीर छोड़कर जाती है तो वो एक कदम भी आगे नहीं आता है, जो चीजें जहाँ है वहाँ ही रहती है। तो इतना आसक्ति क्यों, इतना लगाव क्यों? इसलिए कईयों को न सिर्फ स्थूल चीजें धन साधन, परंतु अपनी भी एक हठ और जिद होती है, अपने विचार ही मनवाने की कोशिश करते हैं, हर बात में अपनी प्राथमिकताओं को महत्व देते हैं, औरों के बारे में वो सोचते ही नहीं हैं। अगर थोड़ा भी हमारे अंदर दूसरों के लिए प्यार हो, सहयोग की भावना हो, उनके लिए रहम दिल हो तो व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। परंतु ये सारे गुण हमारे में तभी विकसित होते हैं जब हम अपने ओरिजिनल गुण संपन्न आत्म स्वरूप से जुड़ते हैं और गुणों के सागर परमात्मा से संबंध जोड़ते हैं। इसलिए अपरिग्रह, सब जगह से कईयों को लेते रहने की वृत्ति होती है, कहीं से कुछ भी मिलता है, जरूरी है या नहीं वो बस लेते ही रहते हैं, उनके अंदर देने की भावना नहीं होती। परंतु हमारे पूर्वज, हमारे देवी देवताएं हमें क्या सिखाते हैं? देवी देवताओं की प्रतिमाएं आपने देखी होगी, उनके सुंदर चित्र देखे होंगे, उन देवी देवताओं के हस्त कैसे दिखाए जाते हैं? दाता और वरदाता के मुद्रा में दिखाए जाते हैं कि उन्होंने अपनी सिद्धियों को, अपनी प्राप्तियों को सदा वो देते रहे हैं, सदा दूसरों के प्रति बहाते रहे हैं। देवता का अर्थ ही है देने वाले। देवी, देव मीन्स दाता, देने वाले। तो जो देता है वो ही संपन्न रहता है। इसलिए देवी देवताओं की प्रतिमा को ध्यान से देखिए कि इतना रत्न जड़ित सोने चांदी के, हीरे मोती के, जवाहरात पहने हुए हैं, वस्त्र आभूषण पहने हुए हैं, लेकिन वो कितने निराभिमानी, अनासक्त आत्मभिमानी दिखा देते हैं। और हम उनके वंशज, भारत देव भूमि के हम नागरिक और विश्व की सभी आत्माओं में बस लेते जाओ, संग्रह करते जाओ, पकड़ते रहते हैं और संग्रह करते रहते। तो आज जो काला बाजार, बनावट, मिलावट, भ्रष्टाचार, ये इसी परिग्रह की वृत्ति के कारण है। हमें तो इस दुनियावी सभी बातों से, हम ये नहीं कहते हैं कि हमें फकीर बन जाना है, जंगल में चले जाना है, नहीं। आवश्यकता और इच्छा के बीच में जो एक सूक्ष्म भेद रेखा है उसको हमें समझना है और हमें केवल स्वार्थी नहीं, स्वकेंद्री नहीं, लेकिन सर्व के सुख और हित के लिए जीवन जीना है। तो अपरिग्रह वृत्ति अपनाना बहुत जरूरी है। ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में ये बताया कि अपरिग्रह क्या है। मैं समझता हूँ हमारे बहुत सारे युवा साथियों के लिए ये अपने आप में एक नया शब्द है। इसको हम पहली बार सुन रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने इसके मतलब के बारे में भी कभी कल्पना नहीं, क्योंकि शब्द ही पहली बार सुन रहे हैं कानों में। और इसे अच्छी तरीके से ये भी समझने में मिला कि आज विश्व के जो चैलेंजेस हैं, जिन परिस्थितियों में आज हम रह रहे हैं, उसके लिए हमारी एक छोटी सी मनोवृत्ति कारण बन रही है। अगर हम उस वृत्ति को बदलें तो दुनिया में सब कुछ सहज हो सकता है, सबके लिए रिसोर्सेस की शेयरिंग हो सकती है। और जो आपने उदाहरण दिया कि आज रिच और पुअर का जो गैप है वो दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, और इसका कारण सिर्फ हमारी ये मनोदशा है कि हम ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा और संग्रह करने के बारे में सोचते हैं। और जब आप ये उदाहरण बता रहे थे तो मुझे याद आया कि प्रकृति में ऐसा कोई भी जीव नहीं देखने को मिलता जो इकट्ठा करके रखे, आने वाले समय के लिए कि भाई भविष्य के लिए इसको रखना चाहिए। सारे पशु पक्षी आज एक दिन के लिए देखते हैं और फिर अगले दिन के लिए वो फिर से प्रयास करते हैं, फिर से पुरुषार्थ करते हैं। और जब हम कहते हैं कि मनुष्य के जीवन का लक्ष्य ही पुरुषार्थ है, और इस पुरुषार्थ को जब हम हर दिन कर रहे हैं तो हम ज्यादा भविष्य के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करना हमारे लिए शायद ये खतरनाक हो रहा है, हमारे मानव जाति के विकास के लिए ये हानिकारक होता जा रहा है। दोस्तों, अगर आप दीदी से कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं या आज के विषय के उपलक्ष्य में कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन पे लिखिए और आपके प्रश्नों को मैं दीदी जी से पूछूंगा जरूर। एक प्रश्न जो सहजता से मेरे मन में आया, मैं उस प्रश्न से शुरुआत करना चाहूंगा। दीदी, जब आप ये कहते हैं कि अपरिग्रह जो है कि इकट्ठा करने की वृत्ति या संग्रह करने की वृत्ति नहीं होनी चाहिए, हम सबको तो ये धीरे धीरे जो सुनते आए हैं, हम ये अक्सर देखने को मिलता है कि भाई भविष्य के लिए इकट्ठा करो। कभी कभार तो ये भी कहा जाता है कि तुम अपने बच्चों के लिए क्या दोगे, ये भी तो सोचो, तुमने उनके लिए क्या देने के बारे में सोचा है। कहीं कहीं तो ये भी सुनने को मिलता है कि कम से कम इतना इकट्ठा करो कि तुम्हारी सात पुश्तें आराम से बैठ के खा सकें। तो ऐसे में अपरिग्रह की जो ये बात कही जाती है, ये जो भारत के आध्यात्मिक चिंतन का प्रतिबिंब करता है, जो सदियों पहले ये बात हमें सिखाई जा रही थी, हम अचानक उन चीजों को भूल चुके हैं, तो आज के लिए कितना प्रासंगिक है और कैसे इस चीज को किया जा सकता है?
देखो, कहते हैं कि बच्चा आपका अगर योग्य है तो उसके लिए संग्रह करने की जरूरत ही नहीं है, वो अपनी योग्यता से ही कमा लेगा। और अगर वो योग्य नहीं है तो भी संग्रह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उसका दुरुपयोग करेगा। हम अपनी आने वाली पीढ़ी को इतना डिपेंडेंट हमारे पर क्यों बना रहे हैं? हर बच्चे को हमें इतना शक्तिशाली बनाना चाहिए कि वो आत्मनिर्भरता से जी सके। वर्तमान समय हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत अच्छा ये लक्ष्य दिया है कि भारत आत्मनिर्भर बने, स्वनिर्भर बने। तो भारत तभी बनेगा ना जब भारतवासी बनेंगे। तो हमें अपने अंदर ऐसी डिपेंडेंसी नहीं डेवलप करनी चाहिए, ना हमारे बच्चों को करनी चाहिए। बिना मेहनत और बिना योग्यता जब बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती है तो व्यक्ति धीरे धीरे विकृत होने लगता है। इसलिए हमें तो उनको अच्छे संस्कार देने हैं, अच्छा चरित्र देना है और मेहनत करके अपने जीवन को अपने पांव पर चलाने की ही शिक्षा देनी चाहिए।
जी दीदी, एक और हमारे साथी हैं, रूपेश मिश्रा नाम है इनका, और इन्होंने ये प्रश्न किया हुआ है। मैं प्रश्न स्क्रीन पर प्रस्तुत करने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। फेसबुक से हमारे साथ जुड़े हैं, वो कहते हैं, व्हाट इज द कॉज ऑफ सफरिंग, प्लीज एक्सप्लेन। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है मैं समझता हूँ, मगर ये बहुतों के लिए आज प्रासंगिक भी है कि ये जो सफरिंग है, ये जो हमें दुख सहना पड़ता है, झेलना पड़ता है, इन सब का कारण क्या है? ये प्रश्न का उत्तर चाहते हैं रूपेश।
हम सभी इस सृष्टि कर्म क्षेत्र पर हैं और इस संसार कर्म क्षेत्र का जो सिद्धांत है कि जैसा करोगे ऐसा पाओगे, जो करेगा वो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा। कर्म सिद्धांत इतना यथार्थ है और इतना अटल है कि हम अपने जीवन में सुख या दुख जो कुछ पाते हैं उसके लिए हमें और किसी को दोषित करने की जरूरत नहीं है। जब से हम अपने वास्तविक आत्म स्वरूप को भूल गए और आत्मनिरीक्षण, आत्मचिंतन करने का अभ्यास नहीं रहा, तब से हम दूसरों को ही दूषित करते रहते हैं कि फलाने के कारण मैं दुखी हूँ, इसके कारण मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, समय ऐसा है, लोग ऐसे हैं, जमाना ऐसे हैं, तो हम दूसरों को दूषित करते रहे, परंतु रियलिटी ये है कि हमारा किया हुआ ही हमारे सामने आता है, परंतु हमें पता नहीं है कि हमने क्या क्या किया है, इसलिए हम वर्तमान में जो दिखाई देता है उनको दूषित करते रहते हैं। हमारी जो आध्यात्मिक अज्ञानता है, आपने स्वामी विवेकानंद को भी पढ़ा होगा, उसमें उन्होंने कहा है कि मानव जीवन के जो भी संघर्ष और घर्षण है वो उसकी आत्मिक अज्ञानता के कारण है। अगर वो हम आत्मिक ज्ञान प्राप्त करते जाएं, अभ्यास में लाते जाएं, तो दुखों का जो कारण है अज्ञानता, विस्मृति और विकृति, जिसको हम विकार कहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, ईर्ष्या, हम इससे मुक्त होते जाते हैं और हम अपने आप में सुख का अनुभव करने लगते हैं। पिछले कर्मों के फल स्वरूप जो परिस्थितियां भी आती है उसमें भी हम अपने आप को समझ सकते हैं, सहन कर सकते हैं और खुशी से उस परिस्थिति को पार कर सकते हैं।
जी दीदी, हालांकि ये जो प्रश्न है ये आज के टॉपिक से मिलता जुलता नहीं है, मगर हमारे बहुत सारे साथी पिछले दिनों से जो कुछ भी होता आ रहा है, थोड़े चैलेंजिंग टाइम्स हम सब फेस कर रहे हैं, हर कोई अलग अलग प्रयास कर रहा है। ऐसे में ज्योति हमारे साथ हैं, फेसबुक से लाइव जुड़ी हैं, पूछती हैं, ओम शांति दीदी, आई एम नॉट एबल टू गेट स्लीप इन द नाइट, मैं रात्रि को सही तरीके से सो नहीं पा रही हूँ। ये समस्या इंसोमनिया का और स्लीप डिस्टर्बेंस का काफी ज्यादा होता जा रहा है, ऐसे में आप इनको क्या एडवाइस करेंगे? ज्योति,
मैं समझती हूँ कि हमारे सारे दिन की दिनचर्या जिस प्रकार से हम व्यतीत करते हैं उसी का असर हमारी रात्रि निंद्रा के ऊपर भी आता है। अगर कोई शारीरिक कारण है तो आप अवश्य डॉक्टर को बताइए और उस पर ट्रीटमेंट लीजिए। अगर कोई मानसिक कारण है तो आप कोई साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से संपर्क करें और आपके मन में जो टेंशन है या उलझन है उसका आप समाधान पाएं। बाकी अगर हम अपनी दिनचर्या सुबह से लेकर रात तक की जो हमारी दिनचर्या है उसको जितना हम सात्विक और अंतर्मुखी बनाएंगे तो रात्रि सोते समय हम बहुत जल्दी मन को समेट सकेंगे और डिटैच हो सकेंगे। आप रात्रि सोने की विधि ठीक हो जाएगी, सुबह उठने की विधि भी ठीक हो जाएगी। बहुत सिंपल बात है कि जैसे हम रात को सोने जाते हैं तो अपना बिस्तर साफ करके, व्यवस्थित करके, अपने हाथ पांव मुंह धो करके फिर हम सोते हैं। इस प्रकार मन को भी साफ करके सोइए। 5 मिनट, 3 मिनट सोने से पहले बिस्तर में ही आप साइलेंस में बैठिए और मन ही मन, कहते हैं ना, जो हम कह नहीं सकते हैं, सह नहीं सकते हैं, वो हम अपने अविनाशी पिता परमात्मा को मन ही मन बताएं। तो सारे दिन में अच्छा, बुरा, सही, गलत जो कुछ किया है वो आप अपना हिसाब बुद्धि के स्क्रीन पर लाइए, सच्चाई से पिता परमात्मा को बताइए, जो अच्छा हुआ है शुक्रिया करें, गलत हुआ है दोबारा न करने की दृढ़ता करें और इस प्रकार मन को खाली करके आप साइलेंस में पिता परमात्मा की याद में सो जाइए तो जरूर आपको धीरे धीरे रात्रि आपका सोना भी ठीक हो जाएगा। बाकी स्थूल बातें तो आप जानते हैं कि अगर लास्ट तक सोने तक हम ऐसे प्रोग्राम देखते रहते हैं टीवी में या अखबार पढ़ते रहते हैं या आपस में तेरी मेरी करते हैं तो फिर वो बातें मन में चलती रहती है, उसका प्रभाव रहता है। इसलिए थोड़ा समय हम शुभ बातों में, पॉजिटिव थिंकिंग में, परमात्मा की याद में, साइलेंस में बैठने की प्रैक्टिस करें तो जरूर आपका ये, और इसमें ही ये योग बहुत मददगार आपको बनेगा। ये जो मन और बुद्धि का सहज राजयोग है वो आपके जीवन को ही ठीक करता है। आपके स्वभाव, संस्कार, आपकी विचार पद्धति, इन सब में ही बहुत ऊंचाई लाता है, बहुत शुभ और श्रेष्ठ धारण करवाता है।
बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही दीदी कि राजयोग के अभ्यास से बहुत सारी चीजें ठीक होती हैं, और उसके लिए क्या करना है, दिनचर्या को ठीक करना, सोने से पहले जैसे हम फिजिकल हाइजीन को ध्यान पे रखते हैं वैसे ही हमारे मेंटल हाइजीन को भी हम ध्यान में रखें, यहाँ पर भी सफाई करें, सब कुछ ईश्वर को अर्पित करें, अंदर से रिलैक्स करवा के अपने आप को रिलैक्स करके सोएं, ताकि हम दिन की शुरुआत भी अच्छा रखें, पूरे दिन को सात्विक बना के रखें, जो भी चीज अंदर डालते हैं वो ध्यान रखें कि वो सात्विक को कुछ नेगेटिव नहीं हो, आता भी है तो उसे हम फिल्टर आउट करना सीखें, और ये सब कुछ राजयोग से संभव है। एक आखिरी प्रश्न की ओर मैं बढ़ता हूँ दीदी, हमारे पास समय की कमी हो रही है। दोस्तों अगर आप कुछ भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो फिर भी आप प्रश्न पूछिए जरूर, इन प्रश्नों को हम कल के कार्यक्रम में भी शामिल करने की कोशिश करेंगे, आपके प्रश्नों के आधार पर हम अगले दिन के टॉपिक में उस चीज को इंक्लूड करने की भी कोशिश करेंगे। हमारे साथ सुनंदा वर्मा जी फेसबुक से हैं, वो कहते हैं ये बात ठीक है कि हम अनावश्यक धन संग्रह नहीं करना चाहिए हमें, पर क्या इमरजेंसी सेविंग्स नहीं करनी चाहिए? जैसे जब परिस्थिति ऐसी है कि सब रोजगार खत्म हो गए हैं, तो ऐसे में ये सेविंग्स ही तो काम आ रही हैं, ऐसा सुनंदा जी कहती हैं।
देखो, मैंने पहले ही बताया कि आवश्यकता और इच्छा के अंतर को हमें समझना है। जो जरूरी है वो तो हमें रखना ही है, पर उसकी एक सीमा हो। कई बार हम चाहिए 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 के रोग में हम संग्रह करते ही रहते हैं, और फिर हमारी बुद्धि उसका सुख लेने के बजाय उसको संभालने में और बढ़ाने में हमारी बुद्धि लगी रहती है। इसलिए आवश्यक तो जरूर हमें रखना है, इसकी तो कोई मना ही नहीं है। आज हम इस ईश्वरीय जीवन में है, सेवा में समर्पित है, पर हमें जो जरूरी है वो हमें दिया भी जाता है और हम रखते भी हैं, पर हमें उस पर आधारितता नहीं, उसका अति नहीं। कहते हैं ना, अति सर्वत्र वर्जयेत, अतिरेक जब होता है तो शांति समाप्त हो जाती है, मन की स्थिरता समाप्त हो जाती है। इसलिए जरूरी सब कुछ हमें करना है, वो ही परक शक्ति हमें आध्यात्मिक ज्ञान से मिलती है, और वो निर्णय कि मुझे अति में नहीं जाना है, वो निर्णय करने की शक्ति हमें योग से प्राप्त होती है।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। मैं समझता हूँ इस प्रश्न का भी उत्तर हम सभी के प्रश्नों के उत्तर के रूप में मिल चुका है हमें। सेविंग्स करना अच्छी बात है, संचय करना अच्छा है, क्योंकि आने वाली परिस्थितियों के लिए संग्रह कितना करना चाहिए ये हम सबके ऊपर निर्भर करता है। क्या जो मिल रहा है उससे हम संतुष्ट हैं? क्या हमारे पास जितना भी मिलता है उसके बाद भी अगर हमारे अंदर इच्छाएं जागृत हैं तो फिर शायद उससे भी हम संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, वहां पर भी हम खुश नहीं रह पाएंगे। तो कहने का तात्पर्य ये रहा है कि आप ये नहीं सोचें, जैसे दीदी ने पहले भी कहा, कि आपको फकीर बन जाना है। नहीं, जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो हम सब अपने लिए एक सीमा निर्धारित करें, और वहां पर इतना मिलने पर इसके आगे हम दूसरों को बांटने के बारे में सोचें, देने के बारे में सोचें, तो एक बड़ा हृदय रखने के बारे में सोचें, सब कुछ स्वयं के प्रति न सोचकर निस्वार्थ भावना को भी अपने हृदय के अंदर अंकुरित होने का मौका दें, और ये अपरिग्रह से हमने ये सीखा है। दीदी, आज आप हमारे साथ जुड़े लाइव और हमारे दोस्तों को इतना अच्छा बोध कराया और साथ में उनके प्रश्नों के उत्तर दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, हम जुड़े थे ब्रह्म कुमारी मुख्यालय के शांतिवन परिसर से, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका, राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी गीता दीदी जी से, और उन्होंने बहुत ही अच्छी बातें आज हमें सिखाई हैं। और पतंजलि के अष्टांग योग सिद्धांतों में से यम में से आज हमने चौथे यम को सीखा है, वो है अपरिग्रह। हमने सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य के बारे में जानकारी ली है और आज हमने अपरिग्रह को सही अर्थ को समझाया है। आज देखिए, आज हमारे आसपास अगर कुछ भी ज्यादा हमने इकट्ठा किया है तो उसमें से थोड़ा किसी और को आज देने की कोशिश करें। हमारे आसपास सब ऐसे समय से गुजर रहे हैं आज जहां सभी की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। ऐसे में अगर हम थोड़ा भी, एक मुट्ठी भी निकाल कर अगर किसी को दे सकते हैं तो शायद हमारे अंदर वो देने की भावना भी जागेगी, अपरिग्रह के वास्तविक अर्थ को हम समझने लगेंगे और दूसरों के काम आ पाएंगे, हमारे जीवन में कुछ बेहतर करने का सुख हम सबको हासिल होगा। कोशिश कीजिए, करके देखिए। आखिर में हम इसी गिविंग के ऊपर, इसी अपरिग्रह के सिद्धांत के ऊपर, जो संतुष्टता है, जो कंटेंटमेंट है, उसके ऊपर एक बहुत ही छोटा सा मेडिटेशन करेंगे। और आज इस लाइव मेडिटेशन में आप हमारे सबके साथ जुड़िए और इस मेडिटेशन को एक्सपीरियंस कीजिए, ताकि हम उस भाव को अपने अंदर ग्रो करें और उस भाव को सर्वत्र स्प्रेड कर सकें। चलिए करते हैं मेडिटेशन। आज के कार्यक्रम का आखिरी सत्र यानी ध्यान यानी मेडिटेशन हम सब मिलकर करते हैं। पिछले 4 दिनों से हम कर ही रहे हैं, तो आज इस चौथे दिन पे इसको करते हैं। आइए मेडिटेशन पर चलते हैं।
अभी कुछ क्षण अपने मन को सभी बातों से निकालकर स्वयं के पास ले आए, अपने मन को एकाग्र कर दें इस थोड़े से समय में स्वयं से बात करेंगे। इस जीवन में मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? मेरा मन ही मुझे जवाब देता है। मेरी खुशी, मन की शांति, सुख की अनुभूति, यही तो हम तलाश करते हैं। आज इन कुछ घड़ियों में, साइलेंस में, देखेंगे स्वयं को, यही सुख, शांति, खुशी पाने के लिए कितनी चीजों, कितने संबंधों में सारा दिन मेरा मन उलझा रहता है, जहां से भी थोड़ी प्राप्ति का अनुभव होता है। जहां भी थोड़ी खुशी मिलती है, मेरा मन उन चीजों को, उन संबंधों को पकड़ने की कोशिश करता है। आज इस साइलेंस में बहुत गहराई से इस बात को रियलाइज करेंगे जितनी भी चीजों को संबंधों को बातों को हमने मन से पकड़ा हुआ है वास्तव में वही मेरे लिए बंधन है। और इस बंधन से स्वयं को मुक्त करना किसी और का नहीं, मेरा अपना कर्तव्य है। तो अभी स्वयं को याद दिला दे ये सभी चीजें, ये सभी बातें सभी संबंध ये सब मेरी रचना है। इन सभी को रचने वाली मैं चेतन शक्ति हूं। अपना ध्यान इन सभी से निकाल कर केंद्रित कर दे मस्तक के बीच चमकता सितारा। इस शरीर की भी सभी कर्मेंद्रियों की मालिक मास्टर ऑफ सेंस ऑर्गन्स मैं चेतन शक्ति देख ले मन की आंखों से ये चमकता सितारा यही मेरी रियल आइडेंटिटी है। इस स्थिति में स्थित होकर महसूस करेंगे इस शरीर का एक एक ऑर्गन इन सब की मैं मालिक आई एम द मास्टर। मेरा मन मेरे मन में चलने वाला एक एक विचार मेरी फीलिंग्स ये सभी मेरे कंट्रोल में है। मैं जो चाहूं वही सोच सकती हूं। मैं जैसे चाहूं मेरे शरीर की कर्मेंद्रियां वैसा ही रिस्पॉन्ड करती हैं। अपने जीवन में प्राप्त। संबंध, मटेरियल्स या कोई भी और प्राप्तियों से मैं बिल्कुल डिटैच होकर उन सभी को देखती हूँ, सब में होते भी, सबके साथ होते भी, किसी का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं है। कोई भी बातें, कोई भी लोग, कोई भी परिस्थितियां मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकती। मैं इस शरीर की मालिक चेतन शक्ति, इसी साक्षी स्थिति में अब मैं उस सुप्रीम परम पिता से कनेक्ट होती हूँ। जो प्यार का सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर है, सारे विश्व की आत्माओं की पालना करते हुए भी सबको स्नेह देते हुए भी जो सबसे न्यारा, साक्षी और डिटैच है, महसूस करेंगे उस परम पिता परमात्मा का प्रकाश ऊपर से, आकाश से भी पार, वहां से मेरे ऊपर बरस रहा है। जैसे कि एक लाइट का शावर, शक्तिशाली प्रकाश, शांतमय प्रकाश मेरे अंदर समा रहा है और मुझे और शक्तिशाली बनाता जा रहा है। इतना शक्तिशाली कि कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी बातें हो, लेकिन मेरा मन एकदम स्थिर और शांत है। परमात्मा की छत्र छाया में एकदम शांत, सब में होते भी सबसे साक्षी, सबको सुख देने की भावना, लेकिन बदले में कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई भी इच्छा नहीं। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सपना दीदी जी चाइना से जुड़े थे और उन्होंने ये खास मेडिटेशन हम सबको कराया, और आशा करता हूं कि आज का मेडिटेशन आपके लिए एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहा है और आप दिन में अनेकों बार समय निकालकर राजयोग का ये अभ्यास करेंगे। इसी 21 दिवसीय योगा चैलेंज में हम फिर कल मिलेंगे आपसे, और इंटरनेशनल योगा डे के रनअप तक हर दिन हम कुछ नया सीखेंगे और हर दिन उस चीज को हम अपने लाइफ में योग के इन सीक्रेट्स को एम्बाइब करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको लगता है कि आप कुछ भी हमें शेयर करना चाहते हैं, कुछ फीडबैक लिखना चाहते हैं, कुछ सजेशंस देना चाहते हैं, तो भी आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में इन सजेशंस को, उन फीडबैक्स को लिखिए। हम जरूर उन कमेंट्स के ऊपर काम करेंगे। आप सभी जो हमारे साथ लाइव जुड़े, जो सवाल पूछे, जिन लोगों ने एंजॉय किया प्रोग्राम, उन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर 5वें दिन मुलाकात होगी एक नए आसन के साथ, योग के एक नए आयाम के साथ, और फिर कुछ नए मेडिटेशन के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना रखिए बेहतर ख्याल। ये था ब्रह्मा कुमारीज मुख्यालय से आप सभी लोगों के लिए फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव प्रस्तुति। कल देखना न भूलें संपूर्ण योग इसी समय पर। नमस्कार।